Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program which gives you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am S. Rangabashyam and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hum hamesha ki tarah desh aur duniya ki chuni hui aarthik, karobari aur share bazaar se sambandhit khabrein lekar hazir hain. Hamare sath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik visheshagya Vishal Dahiya. Vishal ji, namaskar, karyakram mein aapka swagat hai.
Dhanyawad Amrish ji.
Aaiye aarambh karte hain angrezi mein headline se jise lekar maujood hain S. Rangabashyam.
Thank you, Amrish. The top stories. Prime Minister Narendra Modi hailed Startup India program for empowering countless youngsters and turning their innovative ideas into successful startups. Benchmark domestic indices continue their positive momentum. Sensex gains 319 points, while the Nifty closes above 23,300 mark. And major Asian and European indices register gains.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने असंख्य युवाओं को सशक्त किया है और उनके नवीन विचारों को सफल स्टार्टअप में परिणत किया है. घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त का दौर जारी. सेंसेक्स 319 अंक बढ़ा. निफ्टी 23,300 अंकों के पार बंद हुआ और एशिया और यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में बढ़त दर्ज की गई.
Well, now for all the details. Prime Minister Narendra Modi has said that the government has left no stone unturned to encourage a culture of startups in the country. In a social media post, Mr. Modi said, over the past 9 years, the transformative program has empowered countless youngsters, turning their innovative ideas into successful startups. The Prime Minister added that government policies have focused on the ease of doing business and ensuring greater access to resources and supporting startups at every juncture. He said the government is actively promoting innovation and incubation centres so that the youngsters of the country become risk takers. Mr. Modi asserted that the success of the Startup India programme reflects that today the country is dynamic, confident and future ready. Government's flagship initiative, Startup India, has completed 9 years today. Our correspondent reports that Startup India initiative has rolled out several programs to build a robust startup ecosystem and transforming India into a job or into a country of job creators instead of job seekers.
Over the past 9 years, the Startup India initiative has played a pivotal role in shaping a vibrant entrepreneurial ecosystem in the country. With more than 1,59,000 startups, India has firmly established itself as the third largest ecosystem in the world. It has created over 16 lakh direct jobs across various sectors. The Startup India initiative has launched various flagship initiatives to provide comprehensive support to startups across different stages of their journey. These schemes aim to address critical areas such as funding, market access, and credit guarantees, ensuring the growth and sustainability of startups. As India continues its journey towards becoming a global leader in innovation, the Startup India programs remains a key driver of economic growth and vibrant entrepreneurial ecosystem. With Dipendra Kumar, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
Yes, Vishal, to talk about this big initiative which was taken almost, you know, a decade back, to be precise, in 2016. From there on, we have come a long way. And now, you know, especially youngsters have this hope that, you know, even if we don't, you know, get into a, you know, 9-to-5 kind of a job, we can have our own startup.
Well, if you look at the numbers, then it is pretty much clear, Rangabashyam, that, you know, the scheme has worked wonders. The plan has worked wonders. It has several sub-schemes as well and several components as well. It's not just one word Startup India scheme. You know, when you go deeper into it, when you look at it, for example, tomorrow if you or me have to, you know, set up a startup somewhere, then the government is going to support at every step. There is a scheme for seed funding, there is a scheme for credit guarantee, there are various other components of the other schemes as well. So the handholding process takes place, and also, you know, this has resulted in very, very successful results also. It's being shown, because you look at the figures, even your correspondent was reporting around 16 lakh jobs we're talking about. Number of startups, if you look at that, then from 500 odd startups in 2016 to 1.6 lakh. Now, that's a huge number in 9 years. And these 9 years have been the time when there have been a lot of technological advancements. You know, technology has been changing at a very fast pace. Keeping track of that technological advancements, staying in tune with them, innovating altogether at the same pace. And it's not just limited to one particular sector or one particular area.
That's right.
You know, IT, healthcare, agri-based startups as well. Delivery, e-commerce, everything. You know, when you look at people are coming up, youngsters are coming up with wonderful ideas. And I was looking at, some of the other lists about those who have made their mark. If you look at companies.
The unicorns you're talking about?
Unicorns, of course. But I'm also talking about the companies with the highest net worth in India right now. If you
so
look
value
at,
creation is there.
Value creation is there. If you look at most of them, you know, some of them were just small startups a few years ago. And over a period of time, they've accumulated that wealth. They have not only accumulated the wealth, but they've also given back to the country, to the society in terms of creating jobs, in terms of creating innovation, in terms of bringing forward solutions to the everyday problems which were being faced by the general public.
But Vishal, do you think, you know, funding is still a problem, and especially, you know, during the initial couple of months, funding could be, you know, kind of better streamlined?
Well, funding will always remain a touchy issue when we're talking about startup ecosystem, because the government will do that much in terms of hand-holding. You know, the government is going to give you seed fund, the government is going to give you a credit guarantee scheme. But then ultimately, you will have to deal with market forces as well. Your idea will have to sell in the market. If it is not a sellable idea, if it is not an economy of scale is not there to the idea, then why would somebody...
Viability has to be there.
Viability has to be there. And that's taken care of by the market forces, you know, the venture capitalists, the investment firms, the individual investors as well. If they see value in your product, they'll put money out there, and... if the product works very well, then the results are for everyone to see.
लेकिन विशाल, अगर हम success rate की दृष्टि से देखें, numbers तो निश्चित रूप से बहुत ही lucrative हैं, बहुत ही आकर्षक हैं. तो उस लिहाज से आपको लगता है कि क्या अभी कुछ scheme में और कुछ ऐसे बदलाव की जरूरत है जो और ज़्यादा प्रभावी हो पाए?
देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था अमरीश जी के, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी आइडिया को फलीभूत करने के लिए उसको एक अमली जामा पहनाने के लिए एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, एक कंटिन्यूस सेट ऑफ पॉलिसीज क्रिएट की जाएं. तो अगर स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो एक कंटिन्यूटी इन पॉलिसी और वो इकोसिस्टम क्रिएट करने की जो बात है वो लगातार 9 साल तक रहा है. यानी कि सरकार का समर्थन पॉलिसीज के तहत और स्कीम्स के जो सब कंपोनेंट्स हैं उनके तहत जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, नए आइडियाज जो लेकर आते हैं, उनके लिए ज़रूर है. अब अगर हम ये देखना चाहें कि उसकी वायबिलिटी कितनी है और वो कितना सक्सेसफुल होगा, तो फिर से हमें वहां जाना पड़ेगा कि अगर आइडिया बहुत अच्छा है और आइडिया की कोई वैल्यू है और वो वैल्यू केवल स्टार्टअप का जो फाउंडर है या को फाउंडर है उसे ना दिखे, वो वैल्यू जो एंड यूजर है उसको दिखेगी, और एंड यूजर अगर उस वैल्यू को तवज्जो देगा तो उससे ज्यादा तवज्जो उसको मार्केट फोर्सेस से मिलेगी, इन्वेस्टर्स से मिलेगी, और वो ग्रो होगा, जो कि हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स में देखा भी है जो कि यूनिकॉर्न बने. थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर दुनिया का हम बने हैं 10 साल से भी कम समय में, तो जरूर कुछ बेहतरीन बात तो है, ना केवल पॉलिसीज में बल्कि उन लोगों में भी जो ये आइडियाज लेकर आ रहे हैं और इन आइडियाज के साथ स्टार्टअप बना रहे हैं।
जी, और चलते हैं अगली खबर की ओर, शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। विदेशों से आने वाले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बढ़त का दौर आज जारी रहा। 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 319 अंक बढ़कर 77,043 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक बढ़कर 23,312 अंकों पर पहुंच गया। प्रत्येक सूचकांक में लगभग 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई। बम्बई शेयर बाजार में व्यापक बाजार के सूचकांकों ने इक्विटी बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप सूचकांक 0.9% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक 1.4% से ज्यादा बढ़ा।
Well, as Amrish just mentioned, the benchmark domestic equity indices today continued their positive momentum amid favorable global cues. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, advanced 319 points to close at 77,043. Similarly, the National Stock Exchange's Nifty 50 added 99 points to settle at 23,312. Both the indices gained 0.42% each. The broader market indices at the BSE outperformed the equity market. The mid-cap index rose over 0.9% and the small-cap index surged more than 1.4%. In the Sensex pack, out of 30 companies, 20 logged gains. Among the top gainers, Adani Ports increased by over 2%. SBI added over 1.5% and Bajaj Financial Services advanced over 1.4%. Meanwhile, in the top laggards, HCL Tech fell over 1.8%, Nestle lost 1.3% and Infosys dropped 1.21%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors ended in the positive terrain. Among top gainers, services advanced over 1.9%, industrials gained more than 1.7%, metal added over 1.5%. Conversely, among the top laggards, information technology shed 0.62%, focused IT dropped almost 0.5%, and FMCG fell over 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,778 companies advanced, while those of 1,188 declined. 101 companies, however, remained unchanged. Vishal, what would you say about the stock market? Some positive movement today, but overall, if you see, especially Sensex, you know, from the highs of 85,000, it has come down to, you know, 76,000 level, although today it, you know, breached that psychological barrier and stepped into 77,000. But for a number of investors, you know, that's a bit jittery.
Well, it would be as of now, because the market is, for the last, you know, few sessions, the market is responding to daily queues, be it domestic or the global ones as well. I would call the last 3 days, including today, the last three sessions, the positive aspect which we are seeing in the market as a relief rally. But for this rally to sustain, before we go into why this relief rally is there, for this rally to sustain, it will all depend upon larger macroeconomic numbers. For example, the GDP growth data, for example, what the budget, brings onto the table. So, of course, market players are waiting with bated breath to look at what the budget holds for them. Also, what the, U.S. Fed decides in terms of its monetary policy stance. Then later on, immediately after the budget, there is RBI's monetary policy meeting as well, which is lined up. So all these will be real major events which will then further outline whether this relief rally is sustained in the long run. As far as this relief rally, why are we seeing it after, tumble down which happened for a few days regularly, is because of simple, daily queues which are coming in. For example, the announcement of Gaza ceasefire, on the geopolitical front, that has been a cause of concern for quite some time for the investors. They must be, some of them must be heaving a sigh of relief. That's one. Two, of course, the U.S. core inflation data which has come in, that has also eased down a little bit. So that is there is a trickle down effect from the U.S. markets to the Asian markets, including the Indian market as well. The dollar and bond yields are also easing down a little bit. Trump trade, which is known as after his election to the post and before he takes over on 20th of January, that seems to have reached its peak moment. So things are settling down out there. All this is leading to the sentiment that FPI outflows might also slow down a little bit. So all this taken all together, I call it a relief rally, but we should wait for to sustain.
Lekin Vishal, aap ise relief rally keh rahe hain, iska matlab ab ye ek do din wali, teen din wali rally hai, iske baad फिर नीचे आना बाजार का आपको ऐसा कुछ आशंका दिखाई दे रही है?
देखिए अमरीश जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बाजार नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, लेकिन रिलीफ रैली से मेरा तात्पर्य ये है कि जो बाजार जो है लाल लाइन क्रॉस कर रहा था लगातार कुछ दिनों से, और उसके बाद अगर लगातार तीन दिनों तक वो हरी पट्टी हमें सेंसेक्स के सूचकांक पे दिखाई दे तो सभी इन्वेस्टर्स का दिल बड़ा बाग बाग होता है, तो वो इसे रिलीफ रैली कहा जा सकता है। अब इसे सस्टेन करने के लिए, जैसे कि मैं पहले बता रहा था रंगम आशिम जी को, अगले जो दो तीन हफ्तों में जो दो तीन बड़े इवेंट होने वाले हैं, जो दो तीन बड़े फैसले आने वाले हैं, जिनमें एक बजट है भारत सरकार का, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसके बाद आएगी, और अभी तुरंत यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसका जो मॉनेटरी स्टांस उसको अपना डिक्लेयर करना है, उम्मीद की जा रही है कि कुछ वो अपनी मुट्ठी ढीली करेंगे जो है, तो अगर वैसा होता है तो ये रिलीफ रैली जरूर सस्टेन करेगी। बाजार हमेशा उतार चढ़ाव के लिए ही बना है। अगर बाजार में दो दिन बढ़ोतरी हुई और फिर तीन दिन उसमें गिरावट आई और उससे अगर इन्वेस्टर परेशान होने लगे तो फिर बाजार थोड़ा सा मुश्किल है सेंसेक्स बाजार।
लेकिन अभी 80,000 वाला थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है मौजूदा हालात में।
अब देखिए, यहां मेरा काउंटर आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि अब जब 60 के आसपास थे तब भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन वो दिल्ली बहुत जल्दी पकड़ ली थी। उसके बाद एनालिसिस ये लगाया जा रहा था कि अब 80 के बाद तो अब 1,00,000 का आंकड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन दो कदम बाजार ने पीछे खींचे, तो क्या पता कई बार लंबी छलांग लेने के लिए जरा एक कदम पीछे हटाना पड़ता है, तो शायद बाजार एक कदम पीछे हट रहा हो। लेकिन कई महत्वपूर्ण फैसले जो आने हैं उनका बहुत इम्पैक्ट रहेगा, और खासतौर पे किस तरह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको देखते हैं। और अब तो केवल हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरफ भी नहीं देखते, अब तो हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की भी बात करते हैं, क्योंकि दोनों की उतनी ही लगभग बराबर की स्टेक है और दोनों कदम ताल मिला के चल रहे हैं।
विशाल, यू स्पोक अबाउट ऑल द बिग ट्रिगर्स लाइक यू नो द बजट अनाउंसमेंट्स, द आरबीआई पॉलिसी एंड यू नो द न्यू प्रेसिडेंट टेकिंग ओवर इन द यूएस। लेट्स ऑल्सो क्विकली talk about the Q3 numbers. We are stepping into the Q3 result season. What can we expect? A kind of a mixed bag or positive outcome?
It's good that you brought in the Q3 results, Ranga, because I missed it earlier. In fact, this relief rally can be partially attributed to some of the Q3 results as well. Some big names on the bourses have come up with positive results, both in tech sector and the big industrial houses as well. So that also gives us sort of a stability aspect or sort of a growth momentum aspect to the investors, thinking that okay, if the big names are playing their cards well and the results are on the greener side, on the positive side, then it seems things are moving ahead in a fashionable direction. Quarter results are mostly a mixed bag only, but it depends whether the mixed bag has the big players doing well or the smaller players doing well. So that again decides the course of action in terms of the larger index performance.
Right. चलते हैं रुपये का हाल जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की कीमत में आज 19 पैसे की गिरावट आई। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 86.55 रुपये दर्ज की गई। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 109.13 पर कारोबार कर रहा था। विशाल, आप क्या कहेंगे, रुपया की कीमत जिस तरह से कम होती जा रही है, कहां कहां जाके रुकेगा रुपया?
देखिए, सवाल ये नहीं है कि रुपया कहां जाके रुकेगा अमरीश जी, सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल करेंसी ट्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें जो डोमिनेंट करेंसी जिनको कहा जाता है वो अब उनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो किस तरफ जा रहा है, खासतौर पर इन कंपैरेटिव एनालिसिस टू जो बाकी जो बड़ी करेंसीज हैं और बाकी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज जिनको कहा जाता है उनकी करेंसीज भी जैसे हैं। अब अगर आप इस हिसाब से देखें तो जापानी येन जो है उसकी हालत में तो पिछले कई सालों से सुधार नहीं हुआ है, तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम करके देखना चाहें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बाजारों की हालत क्या है और उसके साथ फिर जो इंटरनेशनल करेंसी ट्रेड की जो बात होती है उसमें भारतीय रुपया हो या फिर अमेरिकी डॉलर हो या जापानी येन हो या ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हो, उनकी स्थिति किस तरह से है। आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो हैं इसका इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत तेजी से बदलती हैं उसका सीधा असर करेंसी इंटरनेशनल करेंसी ट्रेड पर हमें देखने को मिलता
जी है। और एक बहुत ही अच्छी खबर, देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 35.11% की वृद्धि के साथ दिसंबर 2024 में दो वर्ष के उच्चतम स्तर $3.58 billion पर पहुंच गया। दिसंबर 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $2.65 billion के स्तर पर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पादों की विदेशी मांग में वृद्धि और घरेलू उत्पादन क्षमता में विस्तार के चलते निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 28.6% बढ़कर $26.11 billion हो गया, जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान $20.03 billion था। विशाल जी, आप क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छी खबर भारत के लिए कि हम न सिर्फ देश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको बढ़ा रहे हैं और उसकी की जो विस्तार है उसका विस्तार हो रहा है, इसके साथ ही साथ हम निर्यात में भी भारत ने बहुत ही महत्वपूर्ण छलांग लगाई है।
देखिए, एक कहावत है अमरीश जी हिंदी में कि अगर आप आम के पेड़ का फल लगाएंगे तो कुछ दिनों बाद आपको आम जरूर खाने को मिलेगा। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये जो फल लगाया गया था बहुत पहले, बीज बोया गया था, तो अब वो पेड़ बड़ा हो रहा है, उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पीएलआई स्कीम की बात की जाए, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट की अगर बात की जाए, तो पहले इस बात पे जोर था पीएलआई स्कीम के तहत कि भारत आत्मनिर्भर बने, जो अपनी अंदर की खपत है इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स की उसको यहीं बनाया जाए और धीरे धीरे फिर आप उससे आउटग्रो करिए और फिर एक्सपोर्ट की तरफ बढ़िए। और ये जो बड़े प्लेयर्स जब अब भारत में मैन्युफैक्चर करके और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे जाहिर है कि ये पॉलिसीज का एक सस्टेन्ड पॉलिसीज है उनका नतीजा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो बाजार है या वो जो सेगमेंट है उसमें मुझे लगता है कि अब उसने ये साबित कर दिया है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
खासतौर से अगर हम देखें कि स्मार्टफोन के निर्यात में 45% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि अभी कुछ साल पहले तक हम सारे स्मार्टफोन बाहर से ही मंगाते थे।
जी बिल्कुल, और पीएलआई की जो स्कीम है उसका इस सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी सब सेक्टर को मिला है तो वो स्मार्टफोन उद्योग को ही मिला है।
जी, वेल लेट्स मूव ऑन नाउ। To promote cross-border transactions in Indian rupee and local currencies, the Reserve Bank of India has liberalized the Foreign Exchange Management Act, FEMA. Overseas branches of authorized dealer banks can now open INR accounts for non-residents to settle permissible current and capital account transactions with residents in India. The amendments also allowed non-residents to settle bona fide transactions with other non-residents using balances in their repatriable Indian rupee account, such as special non-resident rupee account and special rupee vastro accounts. Vishal, what would you say? Some kind of easing as far as foreign exchange dealings are concerned?
Well, yes, indeed. This is one step ahead, Ranga, because these SRVA accounts were announced in July 2022 by RBI. And that was a very important step at that point in time. And the RBI had said that, you know, going further, we will further ease the norms so that, you know, the benefit reaches to the end users in much larger, the scope of the benefits becomes a little bit much larger. What you're pointing out, in addition to that, you know, this step is going to also also help those residents, those Indians who are residing outside India in terms of, you know, investments, their investments as well. They'll be able to, make investments through their INR accounts into foreign investments as well, FDIs as well in non-debt instruments. So this all in all opens a lot of routes for Indians who have, accounts overseas and want to trade in Indian rupee, make use of that money which is there in their repatriable accounts, and SRVA going one further step ahead, they're basically making it easier for Indians.
Right. More news from RBI. The Reserve Bank of India announced to conduct variable rate repo auctions on all working days in Mumbai, with reversal taking place on the next working day until further notice. The auction will be conducted between 10 a.m. and 10:30 a.m. every day. RBI mentioned that standalone primary dealers will be allowed to participate in these auctions along with other eligible participants. So some loosening of criteria there. But, I want to talk about, as far as the policy is concerned, what can we, probably expect in February first week?
Well, this is a very important question. Every, investor, every market trader, every economist is trying to find the answer to that. Also, it is going to become really important because we have a new governor now in the central bank. So, of course, we'll have to see as to what is his, first major decision as the governor of central bank in terms of the monetary policy. Because then you set the benchmark out there for the market to see, for the investors to see as well.
Can we expect a 25 basis points cut?
Well, we should be expecting more, but the question is whether they will do it right now, because RBI has time and again pointed out that core inflation still remains a sticky issue or a worry cause of concern for them. But again, this is going to come immediately after the budget announcement, so we'll have to wait and see as to what kind of in tandem steps both the government and the central bank are going to take on that.
Right.
और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल जान लेते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज तेजी का माहौल बना रहा. हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक दोनों में ही 1.21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.07% से अधिक का इजाफा दिखाई दिया. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकेई 0.33% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% तक बढ़े. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार आज दिन के कारोबार के दौरान अच्छा प्रदर्शन करते दिखाई दिए. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 2%, लंदन के फुटसी में 0.5% से अधिक और जर्मनी के डेक्स में 0.1% से अधिक की तेजी चल रही थी.
Let's go on to the American markets. U.S. stocks displayed strong performance yesterday, with all three major indices registering significant gains as lower than expected December core inflation data and solid earnings from major banks boosted the market sentiment. The Nasdaq composite surged over 2.4%, S&P 500 soared over 1.8%, and the Dow Jones Industrial Average advanced over 1.5%. Earlier, the Bureau of Labor Statistics said the consumer price index rose at an annual rate of 2.9% in December from November's 2.7%, in line with expectations for a 2.9%. And look at the energy scenario. Oil prices witnessed a downtrend today. Brent crude was trading at $81.29 per barrel, declining almost 1%, while the West Texas Intermediate crude also fell over 0.9% to trade at around $79.30 per barrel, according to latest reports.
Aur Sarafa Bazaar mein Sona aaj badhat ke saath karobar kar raha tha. Antim samachar milne tak Bharat mein 24 carat सोना 0.32% बढ़कर 79,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.11% बढ़कर 93,120 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.30% बढ़कर 78,949 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. और अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. विशाल जी इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद अमरीश. थैंक यू.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ क्विक लुक एट द टॉप स्टोरीज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्स स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम फॉर एम्पावरिंग काउंटलेस यंगस्टर्स एंड टर्निंग देयर इनोवेटिव आइडियाज इंटू सक्सेसफुल स्टार्टअप्स. Benchmark domestic indices continue their positive momentum. Sensex gains 319 points, while the Nifty closes above 23,300 mark. And major Asian and European indices register gains. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.